તારીખ 29/1/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 279 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનો ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 223
પ્રશ્ન 280 प्रश्न किया है कि कार्य होता क्यों नहीं, मतलब ये है कि हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, बात समझ में भी आती है और भी पूजा भक्ति आदि भी देव गुरु शास्त्र के प्रति भी समर्पण करते हैं, ये सब करते हुए भी कार्य होता क्यों नहीं, कार्य माने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, सम्यक दर्शन ज्ञान आदि की प्राप्ति क्यों नहीं होती है, ऐसा प्रश्न उठाया है। समाधान देते हैं कि जितना कारण दे उतना कार्य हो, ये क्या है, कार्य क्यों नहीं होता है कि कारण नहीं दिया। अब क्या है कि शास्त्र अभ्यास किया, सत्संग किया, पूजा भक्ति किया, उसको हमने कारण माना और कारण माना है, इसलिए उस कारण से कार्य की अपेक्षा भी रखते हैं, वास्तव में वो कारण है ही नहीं, वो बात समझ में नहीं आई। समझ में भूल रही, समझ में भूल गई, क्योंकि कार्य का संबंध तो कारण के साथ है, कारण प्राप्त हो गए और कार्य प्राप्त नहीं हो गए ऐसा तो कभी बनता नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप है, कारण कार्य अविपरीतता वो वस्तु का स्वरूप है और हम कारण को कारण नहीं, कारण नहीं है उसको कारण समझें तो हमारी कारण कार्य विपरीतता है। यहां तो स्पष्ट बात यह है कि जितना कारण दें उतना कार्य हो नहीं हो ऐसा बनता नहीं है, कारण की कचास से कार्य की कचास है, कारण अधूरा है तो भी काम नहीं होगा, सही कारण नहीं होगा तो भी कार्य नहीं होगा। सही कारण तो पुरुषार्थ का है, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ प्रधान है, शास्त्र स्वाध्याय का विकल्प से काम हो जाए ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि सारी जिंदगी शास्त्र स्वाध्याय करने वाले को भी काम नहीं हुआ, पूरा कारण न दिया जाए तब तक कार्य नहीं आता और कारण न दिया जा सके तब तक उसकी भावना करवी। भेद ज्ञान की धारा का अभ्यास करते रहना ये कारण है स्वानुभव का, अपने पुरुषार्थ से भेद ज्ञान का प्रयोग चलना चाहिए, वो बिना पुरुषार्थ नहीं चलेगा, तो साथ में वो बात है कि पुरुषार्थ से क्या करना है, पुरुषार्थ करना मतलब क्या करना, कि पुरुषार्थ पूर्वक भेद ज्ञान करना। भेद ज्ञान एक ऐसा कारण है कि जिससे स्वानुभूति उत्पन्न होती है। अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार में स्वानुभूति को भेद ज्ञान मूलाम ऐसा कहा है। कैसे है स्वानुभूति? भेद ज्ञान मूलाम, भेद ज्ञान जिसका मूल है उसका फल स्वानुभूति है। इसलिए भेद ज्ञान की धारा का अभ्यास करते रहना, निर्विकल्प आत्मा की दृष्टि यानी रुचि करनी, स्वरूप की रुचि करनी, स्वरूप की रुचि और रुचि पूर्वक भेद ज्ञान का प्रयोग वो स्वानुभव को ले आता है। जब तक पूरा कारण नहीं दिया जाए तब तक कार्य नहीं आता, ऐसा सिद्धांत है। सिद्धांत है कहो या वस्तु का स्वरूप है कहो। जब तक पूरा कारण नहीं दिया जाए यानी पुरुषार्थ भी अधूरा हो तो भी काम नहीं होगा, और पुरुषार्थ नहीं हो, अन्यथा पुरुषार्थ हो तो भी काम नहीं होगा। जब तक पूरा कारण नहीं दिया जाए तब तक कार्य नहीं आता, ऐसा सिद्धांत है। उस कारण की चर्चा, कारण सुनने विषय अधूरे रह जाएंगे। कार्य न हो तो समझना के कारण कमती है या कारण है ही नहीं, तो दूसरा कारण है। कार्य नहीं होता है तो समझना चाहिए कि या तो हमारा कारण अधूरा है या तो हमारा कारण कोई और है और कार्य होने का कारण कोई और है। हाँ, पुरुषार्थ लगता है, भेद ज्ञान में पुरुषार्थ लगता है। बिना पुरुषार्थ भेद ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। पुरुषार्थ का स्टेज तो अवलोकन से ही चालू हो जाता है, बिना पुरुषार्थ अवलोकन भी नहीं होता। कार्य न हो तो समझना के कारण कमती है या कारण कम है या तो कारण बराबर नहीं है, अतः कार्य नहीं आता। इसलिए कारण के माने पुरुषार्थ की तीव्रता करनी है। जिसको पुरुषार्थ चलता है उसको तो पुरुषार्थ की तीव्रता करनी चाहिए। प्रतिक्षण उसका अभ्यास करते रहना वही करने का है। भेद ज्ञान का अभ्यास, अभ्यास को हो यानी प्रयोग की प्रैक्टिस को हो, बार बार जो करने में आता है उसको अभ्यास कहने में आता है। तो प्रतिक्षण मैंने लगातार क्या एक लय से काम होना चाहिए। मुमुक्षुता का जो क्रम है उसमें शुरू से वो सिद्धांत है कि एक लय से काम होना चाहिए। एक लय मैंने क्या, त्रुटक त्रुटक नहीं होना चाहिए। कभी हमारे परिणाम की लाइन टूट जाए फिर चालू हो, फिर टूट जाए फिर चालू हो, उसमें काम नहीं होता। तो कारण कमती पड़ता है। धारावाही चलने प्रतिक्षण में लिखा ना, प्रतिक्षण का अर्थ वही है कि धारावाही, उसका मैंने भेद ज्ञान का अभ्यास करते रहना वही करने का है। बहुत स्पष्ट कर दिया है, कोई बात गोल गोल नहीं रखी है। मुमुक्षुता में आकर के उसमें आगे बढ़ करके वेद ज्ञान का प्रयोग करते जाना चाहिए, वही स्वानुभूति का कारण है। और वो भी वेद ज्ञान लगातार एक लय से धारावाही चलता है तो काम आता है। कभी चले कभी नहीं चले, कभी चले कभी नहीं चले, इसे नहीं आएगा। हाँ, वो तो जो ज्ञान दशा का भेद ज्ञान है उसकी बात अलग है। ये जो है ये भेद ज्ञान ज्ञान दशा पाने के लिए जो होता है उसकी बात है, क्योंकि ज्ञान दशा में तो भेद ज्ञान सहज रहता है, चालू ही रहता है प्रतीक्षा, क्योंकि ज्ञाता दृष्टा की परिणति है, इसलिए सभी भिन्न ही दिखने में आता है। परद्रव्य और परभाव भिन्न भिन्न ही दिखने में आता है, जबकि मुमुक्षु की भूमिका में थोड़ा अंतर रहता है। मुमुक्षु ने कोई प्रश्न किया, फिर इतनी बात सुनते हुए मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि क्षण क्षण तो अभ्यास नहीं होता, हमारा प्रतिक्षण तो अभ्यास, लगातार अभ्यास तो नहीं होता, क्या करे? यानी कभी भी कहेंगे कि हमको तो कहीं और काम भी करना पड़ता है, दूसरे दूसरे भी उदय आते हैं, उदय के कार्य भी करने पड़ते हैं, और अगर हम लगातार यही करते रहे तो दूसरे काम कब होवे, ये भी प्रश्न होता है। दूसरे दूसरे भी काम तो होते ही है, वो कब होवे? इस सब प्रकार का जो अभिप्राय है वो गलत अभिप्राय है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसका रुचि अनुसार परिणमन भीतर में दूसरे सैकड़ों कार्य करते हुए भी चलता रहता है। आता है किसमें? आता है द्रव्य दृष्टि प्रकाश 250 नंबर के बोल में आता है वो, जिसको जिसकी रुचि होती है उसका परिणमन भीतर में दूसरे सैकड़ों कार्य करते हुए चलता ही रहता है। दूसरे जो कार्य है इसका उपयोग ऊपर ऊपर से चलता है, और ऊपर ऊपर के उपयोग से दूसरे सब उदय के कार्य हो ही जाते हैं, और वो बात समय को अनुभव में आ सके ऐसी है, सबके अनुभव में आ सके ऐसी बात है। जैसे हम चलते हैं तो चलते भी हैं, और हमारी रुचि का विषय का हमको विकल्प और विचार भी भाव भी, रुचि के भाव चलते हैं, जहाँ हमारी रुचि है उसे भी भाव चलते चलते आते हैं कि नहीं आते हैं, खाते खाते आते हैं कि नहीं आते हैं, रसोई बनाते बनाते आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रुचि वाला परिणमन तो सबको होता ही है, बाकी जो उदय के कार्य है वो ऊपरी ऊपरी उपयोग से हो जाता है, वो चलता रहता है। जो भैंस ने जवाब दिया है कि वह कहाँ से हो, क्षण क्षण तो अभ्यास नहीं होता, तो बोले कि कहाँ से हो, क्यों नहीं होता है? कि विभाव का अभ्यास सहज हो गया है, विभाव का अभ्यास सहज हो गया है। शिक्षण विभावों का स्मरण आता है, इसलिए यहाँ कारण कमती है तो कार्य कहाँ से आए हैं। विभाव में जो अभी तक आदत बन गई है रुचि भी रह गई है तो वो सहज होता है, वो प्रतिक्षण होता है कि नहीं होता है, आपको कोई पूछे कि आपका अज्ञान और मिथ्यात्व चालू रहने के लिए, टिकाने के लिए आप कौन सा पुरुषार्थ करते हो? जब मिथ्यात्व और अज्ञान चालू है तो उनका पुरुषार्थ भी चालू है, वीर्य गुण का परिणमन कब नहीं है बताइए? वीर्य गुण का परिणमन कब नहीं है? पुरुषार्थ का परिणमन किस जीव को नहीं है? ये सभी जीव को, सभी गुण का परिणमन चालू ही होता है, होता ही रहता है। तो उल्टा सहज पुरुषार्थ भी चालू है और वो भी प्रतिक्षण है, लगातार रहता है, वहां प्रश्न नहीं उठता कि लगातार कैसे रहे, क्योंकि सहज हो गया है। वैसे यहां भी सहज हो जाना चाहिए। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव सहज स्वभाव है, सहजात्म स्वरूप है। कैसा है? आत्मा स्वरूप है, वो सहजात्म स्वरूप है और उसका परिणमन भी सहज होता है। करना पड़े वहां तक सहजता नहीं है, कृत्रिमता है। और सहज स्वरूप के साथ कृत्रिमता का मेल नहीं खाता, वो सुसंगत नहीं है। मेल नहीं खाता मतलब सुसंगत नहीं है। इसलिए ये वेद ज्ञान का अभ्यास भी सहज हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं कि विभावों का अभ्यास सहज हो गया है, प्रतिक्षण विभावों का स्मरण आता है, प्रतिक्षण विभाव चालू रहता है, इसलिए यहाँ कारण कमती है तो कार्य कहाँ से आए? कि कभी प्रयोग करे कभी नहीं करे, कभी प्रयोग करे कभी नहीं करे, विभाव में नहीं बना, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य बना लिया तो सहज चलेगा। तो वो जो भाव भाषण होता है तब लक्ष्य होता है। और कृपालु देव ने लिखा कि शास्त्र स्वाध्याय क्यों, लक्ष्य थवाने तेहनो कया शास्त्र सुखदायी। लक्ष्य होने के लिए ये स्वाध्याय है। लक्ष्य कहो, स्वरूप का निश्चय कहो, स्वरूप की पहचान कहो, ये जब होता है तब सहज चलने लगता है। क्योंकि आत्मा स्वरूप से ऐसा महान पदार्थ है कि जिसका लक्ष्य होवे तो उसका लक्ष्य अनुसार परिणमन चालू ही रहे, ऐसा महान पदार्थ है। लेकिन लक्ष्य में आए तब तो, और लक्ष्य में आने के लिए ये सत्संग स्वाध्याय आदि बाह्य साधन है। क्या कहते हैं? इसलिए यहाँ कारण कमती है तो कार्य कहाँ से आए? वैसे तो स्वयं ही है, क्या है, आत्मा है तो स्वयं ही है, स्वरूप तो स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए कोई पराधीनता नहीं है, पुरुषार्थ भी स्वाधीन है इधर, और बाहर कुछ लेने जाना नहीं है, और हमारे कार्य के लिए कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है। कोई ऐसा कहे कि ऐसी कोई परिस्थिति बने बाहर में तो हम काम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे, वो बात बराबर नहीं है। तो बराबर बात नहीं है। हमारे स्वकार्य में साधनांतर की अपेक्षा नहीं, साधनांतर मैंने दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा में साधन नाम की शक्ति है। क्या है? उसको करण शक्ति कहते हैं। कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, छह कारकों की शक्ति है ना, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति और अधिकरण शक्ति, 47 शक्ति में आया, 47 शक्ति है। इसलिए साधन नाम की, करण नाम की शक्ति से साधन संपन्न ही आत्मा है, उनको दूसरा साधन की कोई अपेक्षा नहीं है। स्वकार्य होता है उसमें खुद ही साधन है, खुद ही करता है, दूसरा कोई साधन उसमें है ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि दूसरा नहीं है और बाहर कुछ लेने जाना भी नहीं है। इसको ले आऊं, इसको ले आऊं, इसको ले आऊं, शास्त्र मिले तो कार्य होवे, हमको कोई सुनाने वाले मिले तो कार्य होवे, वो बात नहीं है। जब तुम्हारा पुरुषार्थ चलेगा तब कार्य होगा, इसके सिवा कार्य होने वाला नहीं है। बाहर कुछ लेने जाना नहीं है, स्वयं अंतर में नहीं जाता, ऊपर ऊपर दृष्टि नहीं करता, अपने ऊपर दृष्टि नहीं करता, स्वयं अंतर्मुख नहीं होता और अपने ऊपर दृष्टि नहीं करता। कर सकता है लेकिन करता नहीं है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। तो ये कहेंगे कि हमारा, हमको तो काम करना है, नहीं हो पा रहा है, क्या करें, हमको काम नहीं करना है, सो बातों नहीं है। तो इसको पूछते हैं कि काम करना है तो काम नहीं हुए, ऐसे विरुद्ध कार्य को क्यों करते हो? क्या आपका काम ही नहीं बने? काम भी करना है और काम नहीं हुए ऐसे परिणाम भी करना है, दो बात तो बनने वाली है ही नहीं। इसलिए कारण नहीं देते तो कार्य नहीं होता। स्वयं अंतर में नहीं जाता, अपने ऊपर दृष्टि नहीं करता, तो फिर क्या करता है कि मात्र विचार करे, भावना करे और फिर छूट जाता है, विचार भी छूट जाता है, भावना भी छूट जाती है, ऐसा कैसे चलेगा? कारण पूरा दे तो कार्य जल्दी आए और कारण अल्प देता है तो इसलिए देर लगती है। कभी करे कभी नहीं करे, कभी करे कभी नहीं करे, एक लय से काम होता नहीं है। कारण पूरा दे तो कार्य जल्दी आ जाए, कारण दे और कार्य नहीं आए वो बात तो है ही नहीं। वस्तु के स्वरूप में जब वस्तु स्थिति स्पष्ट है तो हमको हमारे कारण के विषय में जांच कर लेनी चाहिए, जो सही है या अधूरा है या क्या बात है। एक बात ऐसी है, जीव का ऐसा स्वभाव है कि उसको जितना लाभ दिखे उसी के अनुपात में, अनुपात में प्रमाण, उसका पुरुषार्थ चले बिना रह नहीं। ये जीव का स्वभाव है। देखो बाहर में हमने जहां भी लाभ माना है, अगर वो लाभ हमको दिखता है तो हमारा उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पुरुषार्थ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आप चार्टर अकाउंटेंट हैं, बोले कि इतना काम आप कर दो, हम आपको 5 लाख रुपया देंगे। तो 5 लाख रुपया तो आप सारे साल में भी नहीं नहीं कमाते, ऑडिट करते करते थक जाते तो भी 5 लाख का बिल नहीं होता है। किसी का 300 का बनाया, किसी का 3000 का बनाया, लेकिन 5 लाख का एक ही काम ऐसा मिल गया, ये काम आपको कर देना है और आप करके आओ और 5 लाख ले जाओ, तो आप ठंडे रहेंगे क्या हैं? रात दिन पीछे लगेंगे कि नहीं लगेंगे है? सब गौण बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जीव का स्वभाव है, सामने लाभ देखें और पुरुषार्थ नहीं उठे वो कभी बनता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुरुषार्थ नहीं चलता इसका मतलब क्या हुआ है? लाभ नहीं दिखा, बराबर है। और दूसरे वर्ष हम ये कहेंगे कि बराबर बात समझ में आती है। क्या है ये? ये कैसा घोटाला है? बात तो समझ में वो आती है कि अनंत सुख का लाभ हो सकता है, अनंत दुख का अभाव हो जाता है। तो अनंत लाभ तो दिखने में आया ही, फिर लगातार पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? वहां तो करता है, रुपयों में तो करता है, यहाँ क्यों नहीं करता है बताओ? फील नहीं होता है क्योंकि इसमें स्वलक्षी बात नहीं हुई। इस समझ जरूर हुई लेकिन परलक्षी, अपने आप को इन्वॉल्व करें कि हमको लाभ हो जाएगा, पुरुषार्थ उठाना नहीं पड़ता, पुरुषार्थ चले बिना रहता ही नहीं, ऐसी बात है। इसलिए स्वलक्षी ज्ञान का कितना महत्व है और परलक्षी ज्ञान सरासर फेल हो जा होता है वो स्पष्ट दिखने में आता है। મણમાં 9 પાંચેરી ની ભૂલી, 8 પાંચેરી નો મણ થાય તો 7 પાંચેરી નો મણ તો 35 શેર તો થાય, 7 × 5 = 35, 5 1 પાંચેરી ની ભૂલ રહી, પણ આ તો મણમાં 9 પાંચેરી ની ભૂલ, એટલે 8 નહીં, મણમાં હવા મણ ની ભૂલ, ऐसी बात हुई। एक मन में 1.25 मन की भूल है कि अपने आप को छोड़ दिया, यही कारण है पुरुषार्थ नहीं उठने का। मूल में भूल है वो 9 पाँच शेर की भूल का, यही तो मीनिंग है, बहुत बड़ी भूल है। नहीं उठा, उठे बिना रह ही नहीं, वो रह ही नहीं सकता। हमारे कहीं व्यापारी लोग बाजार में हम देखते हैं बूढ़े हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, उनको इनके जो परिवार वाले लोग दुकान में होते बोले कि दादाजी आप दुकान पे मत आइए, आपको आना जरूरी नहीं है क्योंकि आप काम नहीं कर सकते, आप घर बैठे ईश्वर भजन करिए। वो क्या बोलता है बूढ़ा कि घर पे मेरा मन नहीं लगता, दुकान में मेरा मन लगता है, भले ही मैं काम नहीं करूं लेकिन मैं एडवाइस दे दापण तो कर सकता हूं, है? और उसके बिना मेरे मुझे चैन नहीं पड़ता। तो ये पुरुषार्थ ऐसी चीज है कि शरीर की कमजोरी और शरीर की हालत को नहीं देखता, बुढ़ापे को भी नहीं देखता। लकड़ी लेके आएगा, गाड़ी में बैठ के आएगा, लेकिन आएगा जरूर, है क्या नहीं प्रत्यक्ष? आपके वो चारों भाई हैं ना, दादाजी वगैरह, पैदल आते थे और पैदल जाते थे। कितना करीब 2 माइल का अंतर है मकान और दुकान का, 2 माइल का। तो दुकान 2 टाइम पर खुलती है, उसको 2 माइल पहले चलने का टाइम निकाल देते थे, खाना खा के आते थे और खाना खाने के लिए दुकान बंद करके चले जाते थे। पैदल 2 माइल आना, 2 माइल जाना। तो 2 फायदा दिखते थे कि एक तो खर्च नहीं होता है और दूसरा तबीयत अच्छा रहता है। चलने से तबीयत अच्छा रहता है, बुढ़ापे में भी एक्सरसाइज मिल जाती है। तो लाभ दिखता है तो सभी प्रकार का पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता है? और कुछ सिलाई का काम था तो घर पे कर लेते थे, बाजार में काम नहीं देते थे, टोपी बनाना, थैली बनाना, वो बनाना, वो करना। लाभ है तो सब कुछ होएगा, लाभ मिलना चाहिए। ये जीव का स्वभाव है, लाभ को जुटाना वो जीव का स्वभाव है, सहज स्वभाव है। यहाँ लाभ दिखता नहीं इसलिए पुरुषार्थ उठता नहीं, ये बात जरूर है। तो लाभ नहीं दिखता इसका मतलब कि परलक्षी समझ हो रही है। स्पष्ट बात हो गई क्या कि परलक्षी समझ हो रही है? ये परलक्ष खा जाता है सबको, सारे स्वाध्याय को, समझ को पर लक्ष्य खा जाता है। हाँ, बहुत नुकसान होता है। पर लक्ष्य रहेगा और पुरुषार्थ नहीं होगा तो अधोगति में चले जाएगा, चला जाएगा। वो भी दिखने में, नुकसान भी दिखने में नहीं आता। लाभ दिखने में नहीं आता, नुकसान भी दिखने में नहीं आता। देखो, और दिखेगा तो 2 ही दिखेगा, नहीं दिखेगा तो 1 भी नहीं दिखेगा। कैसी विचित्रता है, कोई सीधी सादी बात को सम्मत नहीं करता है, मंजूर नहीं करता है, तो हमको लगता है कि ये विचित्रता है। इतनी सीधी बात समझ में नहीं आती, हमारी विचित्रता कितनी। मार्ग तो सरल है, मार्ग तो सरल है, दिखता है अटपटा, वो तो हमारी ना समझ है, बाकी मार्ग तो सरल ही है। कारण पूरा दे तो कार्य जल्दी आए, कारण अल्प देता है इसलिए देर लगती है। जितना विलंब हो वह कारण की खामी है। जितना भी विलंब होता है उसमें कारण की भूल है या कारण की क्षति है, यही कारण है। वो बात तो एकदम स्पष्ट है। इसलिए कार्य नहीं होता है इस विषय में कारण की तलाश कर लेना चाहिए, पूरी जांच कर लेना चाहिए। कारण देंगे और कार्य नहीं होगा वो तो बनने वाला है ही नहीं। तो क्या जीव उल्टा भी करता है और सुलटा कार्य की अपेक्षा रखता है, वो बात बनने वाली है ही नहीं। इसलिए अवलोकन इसको होता है कि जिसको दरकार हो गई कि मेरा उल्टा क्या क्या चल रहा है, मेरा कार्य क्यों नहीं हो रहा है, तो अवलोकन निज अवलोकन बिना पता चलता नहीं है किसी को भी। अवलोकन करो तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा। और अवलोकन स्वलक्ष्य के बिना आएगा नहीं। स्वलक्ष्य वाला ही एक लय से लगातार अवलोकन कर पाएगा, तो उसी को ही लगातार एक लय से भेद ज्ञान हो पाएगा, दूसरे का उसमें काम है नहीं। पर लक्ष्य में एक और भी बात है, पर रुचि है तो पर लक्ष्य है। पर लक्ष्य का जन्म कहां से होता है? पर रुचि में से होता है। पर की रुचि है, इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मकल्याण की जरूरत नहीं लगी। रुचि जरूरत में से पैदा होती है, आत्मकल्याण की और आत्मा की जरूरत नहीं लगी, इसलिए परलक्ष बना रहता है। परलक्ष बना रहता है तो बात खत्म, पुरुषार्थ उठने वाला है ही नहीं। इस तरह से कारण कार्य की जो श्रृंखला है, सिद्धांत है, वो तो अखंड है, वो तो अखंड है। हमको हमारे साधन और कारण की गहराई में जाकर के जो भी अनुचित है उसको फेरफार कर लेना चाहिए। यहाँ तक कुसुम तो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। बहुभाग मुमुक्षुओं को इस बात का समाधान नहीं होता कि हम कुछ न कुछ धर्म साधन करते हुए भी
हमारा कार्य क्यों नहीं होता। परंतु कार्य होने में कारण की अपेक्षा है, सही कारण होने पर सही कार्य नहीं हो ऐसा बन सकता नहीं। क्योंकि वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि कारण मिलने पर कार्य होता ही है। परंतु जीव के पर रुचि पर लक्ष्य होने से यथार्थ पुरुषार्थ उठता नहीं और लगातार परिणाम नहीं चलने से इसका फल नहीं मिलता। ऐसा आशय यह जानना